नमस्कार भारत, 16 नवंबर शनिवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति चुनाव, भारत या चीन किसके करीब जाएगा ये देश?
अगर राजपक्षे चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी विदेश नीति पश्चिमी देशों के मुकाबले चीन के पक्ष में होगी।
केरल में आज खुलेंगे सबरीमाला मंदिर के कपाट, महिलाओं को नहीं मिलेगी सुरक्षा।
सरकार ने कह दिया है कि जो भी महिला 50 साल की कम उम्र की जो महिलाएं हैं वो वहां जाने के लिए पिछले साल सरकार ने कुछ पुलिस की सुरक्षा दी थी, इस साल वो नहीं करेगी।
जानेंगे अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर क्यों परेशान है बेंगलुरु पुलिस।
बिकॉज ये अपराधी नहीं है, इनके ऊपर हमने कोई केस नहीं दर्ज किया, सो इसलिए इनको हमने अपनी कस्टडी में नहीं ली और जुडिशियल कस्टडी में भी नहीं इनको भेजा।
होगी विवेचना भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। अप्रैल में हुए ईस्टर बम धमाकों के बाद श्रीलंका में पहली बार इतने बड़े स्तर पर चुनाव होने जा रहे हैं। श्रीलंका में लगभग 1.5 करोड़ मतदाता आज वोट डालेंगे। इन चुनावों के नतीजे सोमवार तक आ सकते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग जांच से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप पर चश्मदीदों को डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। वहीं ट्रंप ने इस सुनवाई को अपमानजनक बताया है। पत्रकारों के साथ बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस सुनवाई में पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी है। उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चेयरमैन एडम शिफ की आलोचना करते हुए कहा कि वो रिपब्लिकन नेताओं को सवाल पूछने का मौका नहीं दे रहे हैं।
I'm the most transparent president in history. And I'll tell you about what tampering is. Tampering is
मैं इतिहास का सबसे पारदर्शी राष्ट्रपति रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि बेईमानी क्या होती है। बेईमानी तब होती है जब शिफ जैसा शख्स हमें वकील नहीं रखने देता। बेईमानी वो होती है जब शिफ हमें हमारे गवाह पेश नहीं करने देते, हमें कुछ बोलने नहीं देते। मैंने आज पहली बार यह सुनवाई देखी और मेरा मन बहुत दुखी हो गया। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। बोलीविया के अपदस्थ राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने कहा है कि अगर उनकी सोशलिस्ट पार्टी चाहेगी तो वह दोबारा होने वाले चुनावों में उम्मीदवारी पेश करने के लिए तैयार हैं। मेक्सिको सिटी में रह रहे मोरालेस ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें चुनाव में खड़े होने का पूरा अधिकार है। हालांकि उन्होंने अपने विपक्षियों की तरफ संकेत करते हुए बताया कि शायद इस बार के चुनाव उनके बिना ही हो जाएंगे। लोकतंत्र की खातिर अगर वो चाहते हैं कि मैं चुनाव में हिस्सा ना लूं तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं इन चुनावों में हिस्सा नहीं लूंगा। मुझे बस हैरानी हो रही है कि उन्हें मुझसे इतना डर क्यों लगता है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा पहला लक्ष्य बोलीविया में शांति और स्थिरता कायम करना है। ये थे बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बोलीविया की नई विदेश मंत्री कैरन लॉनगैरिक ने कहा है कि उनका देश वेनेजुएला सरकार के साथ सभी राजनयिक संबंध समाप्त कर रहा है। वेनेजुएला सरकार को इवो मोरालेस के करीबी माना जाता है। कैरन ने वेनेजुएला पर बोलीविया के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है। बोलीविया में वेनेजुएला के 9 नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग इवो मोरालेस के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों के एक शिविर के नज़दीक बम धमाका हुआ है जिसमें कम से कम 2 लोगों के मारे जाने और दर्जन भर से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। इराक के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि यह धमाका तहरीर चौक के पास हुआ। यह जगह सरकार विरोधी प्रदर्शन करने वालों का केंद्र है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबे अहमद ने धमकी दी है कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपसों में हिंसा लगातार जारी रही तो वह उन यूनिवर्सिटियों को बंद कर देंगे। हाल ही में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में हुई जातीय हिंसा में कम से कम 4 छात्रों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा के चलते कई छात्रों ने यूनिवर्सिटी आना ही छोड़ दिया है। स्वीडन की सरकार ने चीन की परवाह किए बिना अपने देश का एक प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार चीन में पैदा हुए लेखक और प्रकाशक गुई मिनहाई को दिया है। गुई मिनहाई अब स्वीडन के नागरिक हैं लेकिन उन्हें चीन ने हिरासत में रखा हुआ है। गुई मिनहाई ने चीन के कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं के जीवन पर आधारित किताब लिखी है। चीन ने स्वीडन के इस पुरस्कार को एक तरह का ढोंग बताया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति चुनाव है। इस साल अप्रैल में ईस्टर के मौके पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों और अंदरूनी राजनीतिक उठापटक के कारण इन चुनावों को बेहद अहम समझा जा रहा है। इस चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार मैदान में हैं और इससे जुड़ी और दूसरी खास बातों की जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ नवीन नेगी मौजूद हैं। जी नवीन, हमें बताएं कि श्रीलंका चुनाव में कौन कौन से मुद्दे अहम रहे।
शाहिद, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति चुनाव हैं वो कई मायनों में अहम है। श्रीलंका में आपको याद होगा इसी साल अप्रैल में ईस्टर के दिन बम धमाके हुए थे और श्रीलंका अब इन धमाकों से उभरने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इस बार चुनावी प्रचार में राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक चरमपंथ जैसे जो मुद्दे हैं वो बहुत जोर शोर से उठाए गए। वहीं 18 महीनों तक चली राजनीतिक उठापटक और अंदरूनी राजनीति का भी इस चुनाव पर असर है और इन सबके साथ श्रीलंका अपनी खराब होती आर्थिक स्थिति में भी बदलाव चाहता है। श्रीलंका चीन के कर्ज तले लगातार दबा है और इसीलिए वह आर्थिक सुधारों की तरफ भी आगे बढ़ना चाहता है।
नवीन, इस चुनाव में कौन कौन से मुख्य उम्मीदवार हैं जैसे आप बताएं?
इस बार कुल जो है 35 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन सबसे मजबूत जो दावेदार हैं वो दो नेता हैं। एक हैं गोटाबाया राजपक्षे जो कि सिंगलीज बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं और वे पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भाई हैं
जी,
और उनके रक्षा सचिव भी रह चुके हैं। श्रीलंका में 26 साल तक लिट्टे के साथ चले गृह युद्ध के दौरान उन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लग चुके हैं। और दूसरे उम्मीदवार हैं यूनाइटेड नेशनल पार्टी के सजित प्रेमदासा जो मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इसके साथ ही वो पूर्व राष्ट्रपति राणा सिंघे के बेटे भी हैं।
और इसके अलावा श्रीलंका की चुनावी प्रक्रिया क्या है, थोड़ी उस पर भी रोशनी डालें।
जी, श्रीलंका की चुनावी प्रक्रिया जो है वो भारत से काफी अलग है। यहाँ मतदाताओं को अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद पर मोहर लगाना होता है और इसके बाद मतों की गिनती की जाती है, जिसके आधार पे जिस उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। और श्रीलंका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और उनके पास प्रधानमंत्री की तुलना में ज्यादा शक्तियां होती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारियों के लिए नवीन। श्रीलंका के चुनाव भारत और चीन के लिए भी अहम है। चीन लगातार श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है, वहीं भारत भी उसका पुराना करीबी पड़ोसी है जो अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहता। इस चुनाव के बाद तय होगा कि श्रीलंका के भारत और चीन से रिश्ते कैसे होंगे, वो किसके करीब जाएगा। इसी पर सुनिए बीबीसी संवाददाता मुरलीधरन काशी विश्वनाथन की ये रिपोर्ट कमलेश मठेनी की आवाज में।
साल 2015 में हुए चुनाव के दौरान श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे पर आरोप लगाया था कि वो चीन के करीब हैं। ये चर्चा भी हुई थी कि अगर राजपक्षे चुनाव हार गए तो क्या चीन को लेकर श्रीलंका सरकार के फैसलों को बदला जाएगा। महिंदा राजपक्षे चुनाव हार गए लेकिन श्रीलंका चीन के करीब बना रहा और वहाँ चीनी निवेश भी जारी रहा। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि इन चुनावों में किसी भी उम्मीदवार की जीत का असर भारत और चीन से रिश्तों पर क्या होगा। कोलंबो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जयदेव यगांगकोडे मानते हैं कि गोटाबाया राजपक्षे का झुकाव चीन की तरफ होगा, लेकिन भारत के बिना चलना भी मुमकिन नहीं।
अगर राजपक्षे चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी विदेश नीति पश्चिमी देशों के मुकाबले चीन के पक्ष में होगी, लेकिन वो भारत के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। राजपक्षे सरकार या फिर किसी और सरकार के लिए भारत के बिना चलना बहुत बहुत मुश्किल होगा। क्षेत्रीय राजनीति में भारत एक अहम प्लेयर है और श्रीलंका का महत्वपूर्ण साझेदार है।
ये थे प्रोफेसर जयदेव यगांगकोडे के शब्द। बीते 10 साल से ज्यादा वक्त से चीन आर्थिक तौर पर श्रीलंका की मदद कर रहा है। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी तट के करीब अम्बाथोटाई में चीन ने महिंदा राजपक्षे हार्बर को अपने नियंत्रण में लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि गृह युद्ध के बाद श्रीलंका के विदेशी मामलों में भारत की अहमियत कम हो गई है। ऐसे में भारत को श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते किस तरह आगे बढ़ाने होंगे, इस पर श्रीलंका में वरिष्ठ पत्रकार वीर शक्ति धनपल सिंघम कहते हैं।
भारत सिर्फ आर्थिक आधार पर श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते तय करेगा, वो तमिल मुद्दों को लेकर दबाव नहीं बनाएगा। न तो भारत और न ही अमेरिका इस स्थिति में है कि वो श्रीलंका को कह सके कि वो चीन को नजरअंदाज करे।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार वीर शक्ति धनपल सिंघम के शब्द। चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी स्थापित करने के लिए श्रीलंका के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। हाल तक भारत के श्रीलंका के साथ रिश्ते तमिल मुद्दों के आधार पर थे। अब श्रीलंका के भारत और चीन के साथ रिश्ते कैसे होंगे, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा कि श्रीलंका की सत्ता पर कौन काबिज होता है। कमलेश मठेनी, बीबीसी, दिल्ली।
श्रीलंका के बाद रुख करते हैं दक्षिण भारत का। आज केरल में सबरीमाला मंदिर के कपाट खुलेंगे। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध इस बार भी हो रहा है। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में फैसला सुनाया था और अब भी अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है। राज्य सरकार ने इस बार मंदिर आने वाली महिलाओं को सुरक्षा नहीं देने का फैसला किया है। फिलहाल वहां के क्या हालात हैं और क्या महिलाओं के लिए इस बार प्रवेश संभव होगा, इस बारे में मैंने केरल में मौजूद इमरान कुरैशी से बात की।
जी, आज 6 बजे के करीब सबरीमाला मंदिर के दरवाजे खुलेंगे और पहला पूजा आज शाम को होने वाला है और 8 से मंडला मकर विलक्कू का जो सीजन है वो शुरू हो रहा है, तो ये सीजन चलेगा मकर संक्रांति तक। और आज बहुत बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं, मगर अभी भी पुलिस बहुत जोरों से तैनात की गई है। करीब 10,000 पुलिसकर्मी का इंतजाम किया गया है बंदोबस्त ड्यूटी पे। इस साल भी तनाव का माहौल रहेगा क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि जो भी महिला 50 साल की कम उम्र की जो महिलाएं हैं वो वहां जाने के लिए पिछले साल सरकार ने कुछ पुलिस की सुरक्षा दी थी, इस साल वो नहीं करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला के इस मामले में 7 सदस्यों वाली पीठ को तो ट्रांसफर कर दिया है, मगर कोर्ट ने ये नहीं समझाया है कि वो पिछले साल का जो 28 सितंबर 2018 का जो कोर्ट का निर्णय था कि हर उम्र की महिलाएं सबरीमाला में पूजा के लिए जा सकती हैं, उस पे रोक नहीं लगाई गई है। तो इस वजह से हर कोई अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उस अपने अलग नजरे से देख रहा है। तो जाहिर है कि अभी पहले कुछ दिन तनाव बना रहेगा यहाँ।
जी, आप कह रहे हैं इमरान तनाव बना रहेगा, लेकिन हमें ये बताएं कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या कुछ महिलाएं जाने की कोशिश करेंगी वहां पर? जैसे केरल सरकार ने कह दिया है कि वो सुरक्षा नहीं देगी महिलाओं को, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो जाने की कोशिश करेंगे?
हाँ, बाकायदा है, विमेंस मूवमेंट नाम के संगठन है, बहुत सारे उसमें महिलाओं के संगठन है, वहां से 2-3 तो जाने का निर्णय ले लिया है, मगर उनका कहना है कि अगर उनको रोका गया तो एक बड़े तादाद में सिर्फ केरला के नहीं मगर आसपास दक्षिण भारत के कई राज्यों से, दूसरे राज्यों से भी शायद वहां से महिलाएं मां जाने की कोशिश करेंगे।
आज खुलेंगे सबरीमाला मंदिर के कपाट। केरल के बाद रुख करते हैं कर्नाटक का, जहां कुछ हफ्तों पहले पुलिस ने अवैध दस्तावेजों के साथ शहर में रह रहे करीब 60 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था। लेकिन अब पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर परेशान है क्योंकि उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का खर्चा बहुत ज्यादा है। पुलिस को उन्हें भेजने के लिए 6.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पुलिस को कभी कभी बड़ी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 12 दिन पहले सरकार ने आदेश जो दिया, पुलिस ने उसका फौरन पालन करते हुए 62 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फैसला लिया कि वो इन अवैध प्रवासियों को जेल नहीं भेजेगी बल्कि उन्हें वापस बांग्लादेश भेज देगी। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि पुलिस को इन लोगों की देखभाल के लिए अपने खुफिया जानकारी जुटाने वाले कोष से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार की तरफ से उन्हें इस काम के लिए अलग से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने बीबीसी को बताया,
बिकॉज ये अपराधी नहीं है, इनके ऊपर हमने कोई केस नहीं दर्ज किया है, सो इसलिए इनको हमने अपनी कस्टडी में नहीं ली और जुडिशियल कस्टडी में भी नहीं इनको भेजा इनको। सो FRRO की कस्टडी में, वो डिटेंशन सेंटर में है अभी। सो डिटेंशन सेंटर से FRRO विल डिक्लेयर दैट यू हैव नो पेपर्स, कोई कागजात नहीं आपको इस मुल्क में रहने के लिए, सो आपको वापस जाना होगा करके। सो वो खर्च उनके पास उठा वो नहीं है, तो वो ताकि शुरू तो हमने किया था, इसलिए अभी तो हमने रेलवे के साथ में संपर्क करने के बाद में एक बोगी रिजर्व किया है।
भास्कर राव का कहना था कि रेलवे की एक बोगी का इंतजाम किया जा रहा है ताकि वो इन बांग्लादेशियों को वेस्ट बंगाल तक पहुंचा पाए और वहां से इन लोगों को बांग्लादेश भेज दिया जाए। पुलिस को उम्मीद है कि केंद्र सरकार खर्च हुई रकम वापस राज्य को दे देगी। लेकिन इतने बांग्लादेशी बेंगलुरु में कैसे आ गए? इस मामले के जानकार और द फेडरल वेबसाइट के रोविंग एडिटर सुदीप्त मंडल का कहना है कि इंडिया और बांग्लादेश की सीमा के पास हर किसी को पता है कि किस तरह बांग्लादेश के लोग भारत में प्रवेश करते हैं। उन्हें लाने वाला एक ठेकेदार होता है और वहां से बेंगलुरु लाने के लिए एक और ठेकेदार होता है। सुदीप्त मंडल ने बीबीसी को बताया,
वो लोग तो यहाँ पे उनको एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन एक और ठेकेदार होता है जो बॉर्डर से उनको यहाँ तक लेके आता है, उनको वो लोग दलाल बोलते हैं बंगाली में, तो उनका लोगों पर बहुत ही बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है कि वो कभी कभी जो यहाँ पे लोकल इसके लिए काम कर रहे हैं उसके साथ भी फिर भी झगड़ा कर लेते हैं कभी ना कभी, लेकिन जो दलाल उनको वहां से लेके आता है वो लोग इशारों पे चलते हैं सर, वो लोग उनको कभी वो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते, एक तरह से मतलब मॉडर्न स्लेवरी है, मतलब गुलामी है।
सुदीप्तो मंडल का कहना है कि जो दलित बेंगलुरु का कचरा उठा रहे थे ठेकेदारों ने उनकी जगह बांग्लादेशों को काम पर रखा है। इसका कारण यह है कि यहाँ के दलित सफाई कर्मचारी को संगठित किया गया है और बेंगलुरु महानगर निगम भी उनके बैंक अकाउंट में उनका वेतन भेज रहा है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
बीबीसी इंडिया बोल।
महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या राष्ट्रपति शासन ही आखिरी विकल्प था? लोकतंत्र की सेहत के लिए क्या है इस घटनाक्रम के मायने? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 16 नवंबर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल
आज शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में जरूर भाग लें। अब नवीन नेगी से जानते हैं कि आज दिल्ली से छपने वाले अखबार क्या कुछ कह रहे हैं।
शायद आज दिल्ली से छपने वाले अधिकतर अखबारों में प्रदूषण को जो है अपनी प्रमुख खबर बनाया गया है, और हम देख भी रहे हैं दिल्ली और एनसीआर में लगातार हवा की जो गुणवत्ता है लगातार बहुत ही खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। कल जो है वह 600 के आंकड़े के पार थी और यही वजह है कि हर एक अखबार में उसको प्रमुखता से जगह दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा कि हवा जब इतनी खराब है तो आखिर लोग सांस कैसे लें, ये सुर्खी लगाई है नवभारत टाइम्स ने। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि 2 साल में सबसे लंबे वक्त तक राजधानी दिल्ली की हवा जो है खराब रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से इस मामले में जवाब मांगा है। और प्रदूषण से ही जुड़ी हुई एक तस्वीर है जिसमें कि दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर, जलेबियां और पोहा खाते हुए उनकी तस्वीर हर अखबार में छपी हुई है।
कल सोशल मीडिया पे
ये तस्वीर छाई रही थी। इसकी कहानी ये रही कि प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए एक संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई थी जिसमें 29 सांसदों में से सिर्फ 4 सांसद पहुंचे और इस बैठक को इस वजह से टालना पड़ गया। और इस तस्वीर के पीछे की कहानी यह है कि उसमें गौतम गंभीर को भी बुलाया गया था, गौतम गंभीर नहीं आए और उनकी ये तस्वीर सामने आ गई कि वो पोहा खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं इंदौर में और क्रिकेट मैच की कमेंट्री कर रहे हैं।
फिर उसके बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है, उसने काफी ट्रोल किया, ये कहा कि
काफी आलोचना की, उन्होंने कहा कि गंभीर
इस पे गंभीर ने सफाई भी दी है,
गंभीर प्रदूषण के प्रति गंभीर नहीं है, फिर गंभीर ने भी इस पर जो है सफाई दी।
जी,
इसके अलावा और खबरों की तरफ बढ़ें तो कल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, उनका अंतिम कार्य दिवस भी रहा और वो रविवार को यानी कल जो है अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। उनसे जुड़ी हुई खबरें हर एक अखबार में हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी सी तस्वीर अपने पहले पन्ने पर छापी है और जिसमें हमें नए जो मुख्य न्यायाधीश होंगे SA बोबड़े और जस्टिस NV रामना हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं और उनके बीच में बैठे हैं जस्टिस गोगोई, और तस्वीर का कैप्शन है चेंज ऑफ गार्ड्स। और इसी से जुड़ी हुई जो खबर दैनिक भास्कर में लिखी है उसमें बताया गया कि जस्टिस गोगोई ने अपने जो आखिरी कार्य दिवस था उस दिन 3 मिनट जो है वो अपने CJI की कुर्सी पर बैठे और 10 नोटिस उन्होंने जारी किए। और अखबार लिखता है कि कभी 3 जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले रंजन गोगोई ने कल कहा कि मीडिया तक पहुँचना जजों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मौन रहना चाहिए।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन नेगी। श्रोताओं, अब आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम विवेचना का है। एक राजनेता और प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों और असफलताओं पर बहस हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि उनके मानवीय पक्ष को किसी तरह नकारा नहीं जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू की 130वीं वर्षगांठ पर उनके जीवन के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर नजर डाल रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
लेकिन आखिर में फौज नहीं बचाती है किसी मुल्क को, न हवाई जहाज बचाते हैं, आखिर में मुल्क की हिम्मत बचाती है, मुल्क का तगड़ापन बचाता है। आखिर में मुल्क का एक एक आदमी, मर्द और औरत, जब तक अपने को एक उस हिंदुस्तान का सिपाही न समझे।
ये आवाज है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। बहुत कम लोग इस बात से असहमत होंगे कि नेहरू एक विशाल हृदय शख्स थे। नेहरू के देहावसान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली ने कहा था, भारत सदा ही उस व्यक्ति का ऋणी रहेगा जिसने राष्ट्र के जहाज को उसकी आरंभिक यात्रा में बहुत कम भूल चूक के साथ मार्गदर्शन दिया। नेहरू के जीवन का सबसे प्रबल पक्ष था भारत के लोगों और आम आदमी से उनका कनेक्ट। डॉक्टर जनकराज जय ने 8 वर्षों तक नेहरू के निजी सहायक के तौर पर काम किया है।
एक बार बहुत को डेलीगेशन द्वारा मिलने आए थे पंडित जी से, साउथ ब्लॉक में थे, पंडित जी लेट हो गए, लेकिन यह है कि ही यूज्ड टू टेक लिटिल नैप इन लंच टाइम, केम होम और देखा कि वो जो नथु इनका सर्वेंट था वो इंतजार करते करते, क्योंकि पंडित जी का ये फरमान था कि मेरे आने से आधा घंटा पहले आप ठंडी मशीन एयर कंडीशनर इसको आधा घंटा पहले खोलो, उसने आधा घंटा पहले खोल लिया, पंडित जी का पता भी इतने बजे आते हैं, लेकिन लेट हो गए। अब वो नथु वही सो गया दरवाजे पर इंतजार करता करता, पंडित जी जब आए तो उन्होंने देखा ये सो रहा और सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान, क्या करें, उन्होंने कहा बिल्कुल मत छेड़ो इसको, सोए रहने दो, उसी से जंप करके ही वेंट इन हिज रूम एंड ही हैड ए नैप, चेंज हिज क्लोथ्स, जब बाहर निकले तो फिर सो रहा था, तो उसने गार्ड जो बैठे थे कि देखो एक आदमी यहाँ खड़ा रहे जब तक ये सोया हुआ है इसको सोया रहने दो, बिल्कुल नहीं जगाना, एंड ही जंप्ड एंड ही वेंट टू द ऑफिस। सो दिस वाज हिज पर्सनालिटी।
1946 के बाद से नेहरू अपनी जेब में हमेशा 200 रुपए रखते थे, लेकिन जल्द ही ये पैसे समाप्त हो जाते थे। नेहरू के असिस्टेंट रहे एमओ मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं,
मैंने आदेश जारी करवाया कि कोई भी अधिकारी नेहरू को दिन में 10 रुपए से अधिक उधार न दे। फिर मैंने नेहरू के सचिव के पास प्रधानमंत्री सहायता कोष से कुछ पैसे रखवाने शुरू कर दिए। नेहरू अपने ऊपर बहुत कम धन खर्च करते थे, यहाँ तक कि उन्हें कंजूस भी कहा जा सकता था, लेकिन सैस प्रूनर की गांधीजी पर बनाई गई एक पेंटिंग को खरीदने के लिए उन्होंने 5,000 रुपये खर्च करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया था। जब 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हुआ तो उनके पास उनका पुश्तैनी घर आनंद भवन था और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ उतने पैसे थे कि वो उस मकान का गृह कर चुका पाएं।
जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने बहुत पहले बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उनका जवाहरलाल नेहरू से झगड़ा हो गया था।
मैं उनसे 10 वर्ष छोटी थी, मगर चूंकि हम लोग इस तरह से पले थे तो बहस तो बहुत होती थी और मुखालफत भी होती थी, एक दूसरे से हम झगड़ा भी करते थे, मगर अंत में कुछ ऐसा होता था कि वही जो कहते थे वो मैं कर ही लेती थी। बाद में मैं सोचती थी कि बात मैंने क्यों की, खासकर जब मैं राजदूत हो चुकी थी। कई ऐसी बातें हुई कि जिनमें मैं सहमत नहीं थी अपने गवर्नमेंट से, मसलन वो हंगरी के मसले के ऊपर, मैं यहाँ थी लंदन में, मैं बुलाई गई वहाँ, मुझसे कुछ कहा गया यहाँ कहने के लिए जो कि मैं समझती थी ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्रों में कृष्णा मेनन ने और हमारे नेताओं ने कुछ और कहा तो मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, मैंने गलत उसको समझा, तो उसके ऊपर मेरी कुछ भाई के साथ थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। मगर वो जैसे कि मैंने बताया ना, रख रखाव बड़ा भाई कोई एक ऐसी चीज़ होता था कि चाहे भले ही मैं मानती थी कि ये मेरे प्रधानमंत्री हैं बड़े भाई नहीं हैं, मगर वो दोनों रिश्ते मिल ही जाते थे और कहना मैं मान ही लेती थी उनका।
कई नीतिगत मामलों पर सरदार से गहरे मतभेद के बावजूद नेहरू निजी रूप से उनका सम्मान करते थे। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने मुझे एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था।
सरदार पटेल का घर पंडित जी के घर के बहुत पास था, तो वो हमेशा पैदल जाते थे वहां पे, और उनको कहा था कि आपको आने की जरूरत नहीं है, जब मुझसे कुछ बात करनी है मैं आऊंगा। मौलाना आजाद जरा दूर रहते थे तो वहां मोटर में बैठ के हमेशा जाते थे, गपशप करते थे उनसे, और टेलीफोन पे ये कर्टसी थी कि फोन खुद मिलाते थे और बात करते थे उनसे।
वैसे तो नेहरू बहुत हंसमुख थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो सारी हदें पार कर जाते थे। उनके सुरक्षा अधिकारी रह चुके के.एम. रुस्तम जी अपनी किताब आई वाज नेहरूज शैडो में लिखते हैं,
1953 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली अपनी पत्नी के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें नेहरू के मशहूर गुस्से का नजारा अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। हुआ ये कि जैसे ही जहाज की सीढ़ियां लगाई गई, वहां मौजूद करीब 50 कैमरामैन मक्खियों की तरह जहाज के चारों तरफ खड़े हो गए। जैसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उतरे, पीछे खड़ी भीड़ भी आगे आ गई और धक्का मुक्की होने लगी। नेहरू का पारा चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कैमरामैन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। किसी एक शख्स ने नेहरू के लिए कार का दरवाजा खोला, नेहरू ने गुस्से में वो दरवाजा बंद कर दिया और फूल के एक बड़े से बुके से लोगों की पिटाई करने दौड़ पड़े। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें जीप पर सवार होने के लिए मनाया। नाराज नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जीप पर राष्ट्रपति भवन गए और उनकी लंबी कार जीप के पीछे पीछे बिना किसी सवारी के आई।
नेहरू का किसी शख्स से स्नेह दिखाने का तरीका हुआ करता था कि वो उसे अपनी इस्तेमाल की हुई कोई चीज दे दिया करते थे। उन्होंने कितने ही लोगों को अपने इस्तेमाल किए हुई टोपी, कमीजें, चप्पलें और जूते भेंट किए। लाल बहादुर शास्त्री को एक बार उन्होंने अपना इस्तेमाल किया हुआ गर्म ओवरकोट दिया था। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मुलाकात के समय शास्त्री ने वही ओवरकोट पहना हुआ था। डॉक्टर जनक राज जय एक और किस्सा सुनाते हैं।
राष्ट्रपति भवन से ही हजाम आता था और जब बाल बना रहे थे तो पंडित जी ने उसको कहा, देखो भाई हम विलायत जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए वहाँ से लाएं। पहले तो बोला नहीं, कहता हम तुमसे कह रहे हैं कुछ लाएं तुम्हारे लिए, विलायत जा रहे हैं भाई हम। बड़ा आस्था से शर्माते हुए कहता, हजूर बात यह है कि आते आते कभी थोड़ा लेट हो जाता हूँ, घड़ी होती तो थोड़ा अच्छा होता। कहता ठीक है, एंड दैट वॉज द एंड ऑफ इट। पंडित जी वैन ई वेंट टू लंडन ही परचेज्ड वॉच, सेशन साथ गए थे उसके साथ सेशन प्राइवेट सेक्रेटरी, तो घड़ी ले आए। नेक्स्ट टाइम ही केम टू प्राइवेट मिनिस्टर हाउस फॉर दिस हेयर कट, अरे तुम हमसे पूछोगे नहीं क्या हम तुम्हारे लिए घड़ी लाए हैं कि नहीं, ही डिड इट, जाओ सेशन से जाके ना घड़ी ले लो, तुम्हारे लिए हम घड़ी लेके आए हैं।
नेहरू को एडवीना माउंटबेटन से इश्क था, कुछ लोग इसे प्लेटोनिक लव कहते थे। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने मुझे बताया था कि नेहरू एयर इंडिया की फ्लाइट से रोज एडवीना को पत्र भेजा करते थे और एडवीना उसका जवाब भी दिया करती थी।
जब मैं हाई कमिश्नर बना तो मैंने कोशिश की कि भाई लॉर्ड माउंटन की बीवी जो है एडवीना और पंडित जी का जो आपस में बहुत इक्वेशन थी तो उसका खोज करूं। तो मैंने लड़की की तरफ से जो ग्रैंडसन था, क्योंकि लॉर्ड माउंटन पैटन का लड़का तो था ही नहीं, तो मैंने उससे कल्टीवेट किया और उससे कहा कि भाई मैं देखना चाहता हूँ जो चिट्ठियाँ हैं। कि मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि इनकी इक्वेशन क्या थी क्या, तो उसने कहा कि भाई उनका स्पिरिचुअल लव था। फिर मैंने दिल्ली में आके बहुत कोशिश की कि उनकी जो चिट्ठियाँ थीं, पंडित जी हर रोज़ चिट्ठी लिखते थे मिसेस माउंटबेटन को और उसका जवाब आता था, एयर इंडिया के थ्रू आती थी, तो इसलिए मैं जब हाई कमिश्नर था तो एयर इंडिया से चेक किया तो कहते हाँ। एक दफ़ा जब वो कहते हैं हमारे से कुछ देर हो गई तो पंडित जी बहुत नाराज़ हो गए थे। मैंने कोशिश की कि ये चिट्ठियों का किसी तरह मुझे पता चले और मैं किताब छापूँ, तो उसके लिए उन्होंने फिर आके मैंने पूछा तो कहने लगे जी उसके कस्टोडियन तो मिसेस गांधी हैं, मिसेस इंदिरा गांधी। तो मैंने कोशिश की तो उसका उन्होंने मिस गांधी ने कहा नहीं वो नहीं।
27 मई 1964 को जब नेहरू का निधन हुआ तो उनकी मेज पर रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये चार पंक्तियां लिखी हुई मिली थीं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।
मन मोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको मिलो मुझको।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की ये विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग जांच से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप पर चश्मदीदों को डराने धमकाने के आरोप लगाए। बोलीविया के अपदस्थ राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने कहा है कि अगर उनकी सोशलिस्ट पार्टी चाहेगी तो वह दोबारा होने वाले चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने के लिए तैयार हैं। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों के एक शिविर के नज़दीक बम धमाका हुआ है जिसमें कम से कम 2 लोगों के मारे जाने और दर्जन भर से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबेय अहमद ने चेतावनी दी है कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपसों में हिंसा जारी रही तो वह उन सभी यूनिवर्सिटियों को बंद कर देंगे। स्वीडन की सरकार ने चीन की परवाह किए बिना अपने देश का एक प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार चीन में पैदा हुए लेखक और प्रकाशक गुई मिन हाई को दिया है। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं नमस्कार। भारत में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम में स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। आपसे अब अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में होगी। तब तक देश दुनिया की पल पल खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com। सभी सहयोगियों के साथ मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।